ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल कृपया साइलेंट मोड पे करें या स्विच ऑफ करें। हरे कृष्ण।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान के विविध अवतारों का, और इनमें हम देखते हैं कि भगवान जब अपने इन विविध अवतारों में आते हैं तो अपने साथ अपने आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं भगवान। जैसे भगवान जब श्री राम अवतार में आए तो धनुष और बाण लेकर आए, भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए, भगवान जब नरसिंह रूप में आए तो क्या लेकर आए, अपने नाखून वो उनके शस्त्र थे। तो ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि जब श्री चैतन्य अवतार ये हुए तो इनके कौन से आयुध थे, इनके कौन से अस्त्र शस्त्र थे? इनके पार्षद, संगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों को इन्होंने अस्त्र शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। भगवान इन अन्य अवतारों में अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया राक्षसों का वध, उनका उद्धार करने हेतु। परंतु कलयुग में कितनों को मारेंगे भगवान, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था जगाए और मधाई को मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु कहे कि इस कलयुग में अधिकांश जगाई मधाई जैसे ही हैं, कितनों को आप मारेंगे? और इस अवतार में यह सुदर्शन चक्र शोभा नहीं देता आपके हाथ में, हालांकि नाम है सुदर्शन, परंतु चैतन्य महाप्रभु के हाथों में वो शोभा नहीं देता। तो ये पंच तत्व, जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, ये जो पार्षद भगवान के हुए, ये एक ऐसी टीम थी इनकी। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु पांच रूप में, अपने भक्त रूप में, गुरु के रूप में, अपने स्वयं के निज अंश कला इनके रूप में अवतरित हुए। और कलयुग में विशेष रूप से ये पंच तत्व, इनका महत्व इतना है क्योंकि कलयुग में अध्यात्म के नाम पर मायावाद जो फैला हुआ है, मायावाद का अर्थ कि हम सब एक हैं। कई बार हमें लगता है मायावादी का अर्थ वो जो माया में है, कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं। नए नए जब हम कृष्ण भावनाव्रत में आते हैं तो सब सिद्धांत सुनते हैं तो अधकुचड़ा कुछ समझ में आता है, तो कई बार ऐसा बोल देते हैं। एक व्यक्ति एक भक्त को बोल रहा था, प्रभु मैं तो मायावादी हूं। वो कहने का अर्थ ये था कि मैं माया में ही रहता हूं, परंतु मायावादी वो अलग श्रेणी है, वो अलग कौम है। वो अद्वैतवादी जो कि कहते हैं कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, यहां तक कि हम ही हैं वो भगवान या वो ही है हम, सो हम तत्वमसी सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारे महामंत्र हैं इनके। तो इसलिए इन सब को ललकारने के लिए भगवान कहे कि ठीक है मैं एक नहीं दो नहीं पांच रूप में आऊंगा, पंच तत्व पंच करने भी, कि यहां इसी में समस्या हो रही थी मायावादियों को कि जीव है और विष्णु तत्व है, ये दो कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये देखो अब दो क्या, मैं पांच के रूप में आता हूं, अब क्या बोलोगे? इसलिए ये पंच तत्व। और ये जो पंच तत्व मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही के जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जितना हरे कृष्ण महामंत्र महत्वपूर्ण है उतना ही ये पंच तत्व मंत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना हम ये जो महामंत्र का जो ताला है इसे खोल नहीं पाएंगे, इसकी पूंजी को नहीं खोल पाएंगे। इसलिए आदि लीला में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इन पंच तत्व के साथ जो हरिनाम बांटना शुरू किए, वो हरिनाम इस प्रकार से बांटा जा रहा था कि कोई सीमा नहीं थी कि कितने लोग इसे ग्रहण कर रहे थे और किस हद तक इसे ग्रहण किया जा रहा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, पात्र अपात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान, ये यहां पायता करे प्रेम दान। कि ये पंच तत्वों ने देखा नहीं, ये इतने हरिनाम में मत, जैसे माधवेंद्रपुरी इनके विषय में हमने सुना, तो ये पंच तत्व भी इतने हरिनाम में मत कि ये देख नहीं पाए पात्र अपात्र, कौन पात्र व्यक्ति है कौन अपात्र व्यक्ति है इस हरिनाम को ग्रहण करने के लिए, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। नाही स्थान स्थान, ये भी नहीं देखा कि किस स्थान पर जाकर देना चाहिए किस स्थान पर नहीं देना चाहिए। और ये जो दान इन्होंने किया ये प्रेम का दान किया। अब देखिए पंचतत्व के विषय में बताया गया है कि क्यों वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो खुद प्रेम मत थे, कृष्ण प्रेम में मत। अब कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति मत अवस्था में होता है तो कुछ भान नहीं होता उसे। एक जब मैं दिल्ली में था तो हमारे साथ एक ऑफिस का एक व्यक्ति, वो हर दिन शाम को मत होता, कृष्ण प्रेम में नहीं दुर्भाग्यवश, तो ये मत होता। और जितने सारे पैसे उसके जेब में होते वो सब लोगों को बांट देता, ये उसकी रोज की क्रिया, ये रोज का उसका क्रम, ये नियम बांध लिया था उसने कि जैसे ही थोड़े ऊंचे बादलों में जाता वो चेतना के, तो तुरंत वो अपने जेब से, और सभी जान जाते, उसका नाम था सावले, तो हम लोग सब बोलते सावले ने ले लिया तो हम चले हिसाब ले। तो वहां पर पहुंच जाते लोग और फिर वो पूर्ण प्रकार से मत अवस्था में अपने जेब से पैसे निकाल निकाल कर मारता, तो सोचिए पगार के दिन क्या होता उसका। तो हम में से कई जो उसके शुभचिंतक उसके जेब को खाली रखते, जब उसका ग्लास भरता तो उसका जेब खाली करते हम, क्योंकि यहां ग्लास खाली हुआ उसका जेब भी खाली हुआ। वो बांट देता, किसी को नहीं देखता, जैसे यहां पर पंचतत्व पात्र अपात्र न देखी स्थान स्थान, वो किसी को देखता नहीं कि कौन है कौन नहीं है, कोई योग्य है कोई पात्र है अपात्र है, कोई कर्जदार है कौन है, नहीं, सबको बांट। तो यदि कोई दारू के नशे में अपना धन बांट सकता है तो क्या पंचतत्व कृष्ण प्रेम के नशे में, कृष्ण प्रेम ये हरिनाम के रूप में नहीं बांट सकते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें क्या शंका हो सकती है किसी को? अब पंचतत्व के विषय में अगले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाढ़े, कि ये लुटिया खाइया, ये पंचतत्व ये खुद लूट के खा रहे थे, बाकी पूरा कलयुग इन्हें देखता रहता, इन पंच तत्वों को ये क्या करते रहते, कौन से भंडार को लूट के खाते रहते, ये कृष्ण प्रेम हरिनाम के भंडार को पहले तो लूटा इन्होंने। तो लूटा क्यों कहा गया है, लूटने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हरिनाम संकीर्तन और ये कृष्ण प्रेम हरिनाम के द्वारा ये अन्य युगों में किसी को नहीं इस प्रकार से बांटा गया, इसे बंद कर ताला चाबी में रखा गया था, तिजोरी जिसे कहते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस प्रेम धन को हरिनाम संकीर्तन को उस तिजोरी से बाहर निकालकर जन साधारण को कोई बांटे, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को अनुमति नहीं थी, किसी को कोई अधिकार नहीं था। तो पंचतत्व जब आए तो उन्होंने देखा ये सारे जो भी अधिकारी हैं इस हरिनाम के, हम किसी की परवाह नहीं करते, हम लूटेंगे, हम इसे खाएंगे और बांटेंगे, आओ कोई क्या करता है देखते हैं। तो इन्होंने जैसे कि हरिनाम का कोई सेतु नहीं, सेतु नहीं, उसे डैम को क्या बोलते हैं, बांध, हरिनाम का बांध। अब बांध का अर्थ है जो बंधा हुआ है, यहां पर है गंगापुर बांध, कितना पानी होता है उसमें, और उसे दीवारों से बांध के रखते हैं। तो मानो कि कोई उस बांध के पानी को निर्बंध कर दे, निर्बांध, तो क्या होगा फिर, बाढ़, सब जगह बाढ़ आएगी। तो यही पंचतत्व ने किया कि ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो बांध था उसे तोड़ दिया, और फिर पूरे कलयुग में बाढ़ लेकर आ गई हरिनाम की। अच्छा, अब यदि हम ऐसे कोई बांध को या किसी तिजोरी के धन को, पूंजी को लें, तो जब उस तिजोरी से निकाला जाता है या बांध से पानी छुड़ाया जाता है तो सब खाली होता है ना, वो तिजोरी का धन खाली, बांध का पानी खत्म। परंतु यहां पर क्या देखा जा रहा था, आश्चर्य भंडार प्रेम षटगुण बाढ़े, कि ऐसा आश्चर्य कि जितना ये बांट रहे थे उतना बढ़ रहा था। तो इसलिए हरिनाम दूसरों को देने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम दूसरों को देंगे उतना हमारे जीवन में भगवान की कृपा बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि किसी व्यापारी को कोई कहे कि ये बटवा लो, इस बटवे से जितना पैसा तुम दूसरों को दोगे उसका डबल तुम्हें मिलेगा, इस बटवे में ही 500 रुपया दोगे 1000 रुपया, तो वो व्यापारी करेगा क्या, बांटेगा ना। यदि ऐसा स्कीम उसे बताया जाएगा कि 500 रुपया दो 1000 रुपया पाओ, तो कौन मूर्ख होगा जो 500 रुपया नहीं देगा, वो 1000 1000 देगा, 1000 दूंगा तो फिर 2000, 2000 दूंगा तो 4000। तो उस प्रकार से यहां पर पंचतत्व हमें सिखा रहे हैं कि लुटिया खाइया, कि ये हरिनाम संकीर्तन की जो लूट मची है हम पहले लूट ले खुद के लिए। प्रभुपाद कहते थे चैरिटी बिगिंस एट होम, और फिर इसे दूसरों को बांटें, और जितना हम बांटेंगे दुगना वो भंडार भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और ये सारे पंचतत्व देख रहे थे कि हमारी तरह सभी जन साधारण भी लूट लूट के खा रहे हैं इस हरिनाम के धन को, परंतु कुछ एक लोग हैं जो फास्टिंग किए हैं, जो नहीं ले रहे। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतर्किक गण निंदक पाषंडियत पदुया अधर्म। यहां पर कहा गया है कि ये कैटेगरी कौन कौन, मायावादी कर्मनिष्ठ जो केवल कर्मकांड में लगे हुए, कुतर्क अंग्रेजी में जिसे लॉजिशियन, ड्राई लॉजिशियन कहते, केवल तर्क वितर्क उसी में लगे रहना, निंदक पाषंडी जो निंदक हैं, पाषंडी हैं, ये सारे कैटेगरी के हरिनाम के इस धन को नहीं लूट रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर इन पर नजर डाले हुए थे कि इन्हें पागल कैसे बनाए इन सब व्यक्तियों को, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सेई सब महादक्ष धन पलाइला, कि ये सारे जो हम लिस्ट लिए इनके, ये बहुत महादक्ष थे। किसमें? दूर भागने में, हरिनाम संकीर्तन से और ये हरिनाम की बाढ़ से दूर भागने में ये बहुत ज्यादा दक्ष थे, महादक्ष। और हम भी कई बार देखते हैं कि जो इन श्रेणी के होते हैं और साधारण भी आजकल कलयुग में वो दक्षता प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे ये हरिनाम संकीर्तन और इनसे दूर भागते रहे। कई बार हमने इसका अनुभव किया है कि जब हम बाहर कहीं यात्रा में या सफर करते हुए, तो कई होते हैं जब हम कीर्तन के लिए बैठते हैं तो तुरंत एक व्यक्ति तो ऐसे कान बंद किए, अपनी दोनों उंगलियों को मानो अब अंदर ही घुसेड़ देगा दोनों उंगलियां, ऐसे पूरे जब हम ट्रेन में कीर्तन कर रहे थे ऐसे बंद किए हुए। तो और कई अलग अलग तरीके से कुछ बहाना लेकर, कलयुग में तो बहुत से बहाने हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि महादक्षता से ये भाग रहे हैं दूर मेरी कृपा से। कल हमने इसकी चर्चा की, यशोदा माई कृष्ण के पीछे भाग रही है, कृष्ण हमारे पीछे भाग रहे हैं, और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? माया देवी के पीछे। तो ये अंधाधुन रेस चालू है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया गया है, एत बलि मने किछु करिया विचार। विचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कैसे इनको पकड़ा जाए। सन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार, कि ये विशेष रूप से मायावादियों को जो कहते हैं कि हम सब एक हैं, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, इन मायावादियों को पकड़ने के लिए, हरिनाम की कृपा देने के लिए सन्यास अंगीकार, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो कि परम भोक्ता हैं, सुप्रीम एंजॉयर, उन्हें परम विरक्त बनना पड़ रहा है। किसके लिए? ये सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो सब कुछ, अपने सारे भोग विलास के साधन को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए, जिसका वर्णन है, इतना मार्मिक वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का कि केवल पढ़ने मात्र से आंखों में अश्रु आ जाते हैं। किसके लिए भगवान गोलोक वृंदावन छोड़कर ऐसा कठिन जीवन सन्यासी का, विरक्त का जी रहे हैं? हमारे उद्धार के लिए, ताकि हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिले और हम उनके धाम लौट सकें। तो ये भगवान की योजना, सन्यास अंगीकार। फिर कहा गया है, सब निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सब निस्तारिते करे चतुरी अपार। कि जैसे ये चतुरता से दूर भाग रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी चतुरता लगाई, चतुरी अपार, और अपार चतुरता लगाई इनको अपने ग्राम में फांसने के लिए, अपने कृपा में पकड़ने के लिए। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कई बार भगवान के भक्त होते हैं, वो बद्ध जीव को भगवान श्री कृष्ण के शरण में लाने के लिए अलग अलग प्रकार के चतुरता लगाते हैं। इसलिए उनका एक नाम है चतुरात्मा, बहुत चतुर होते हैं। और श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में लिखे हैं, दे प्ले वेरी इंटेलिजेंट ट्रिक्स, कि चतुरता से वो बद्ध जीव को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उसे पता भी नहीं लगता और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है बद्ध जीव। जैसे एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए और बोल रहे थे, आपकी गीता में क्या सब जगह आपने केवल कृष्ण कृष्ण का नाम बोला है, अष्टांग योग, छठा अध्याय अष्टांग योग है जिसमें भगवान ध्यान योग के बारे में, और आप कृष्ण कृष्ण तात्पर्य में लिख रहे हो। तो प्रभुपाद शांति से सुन रहे थे। प्रभुपाद ने फिर पूछा, और कहां पर आपने पढ़ा ऐसा, और 13वां अध्याय वहां पर कहां ये भक्ति योग के बारे में बताया गया, आप कृष्ण भक्ति योग, और कहां 17वें अध्याय में, इस अध्याय में, उस अध्याय में, सब प्रभुपाद केवल पूछते जा रहे थे, और कहां, और कहां, और कहां। तो प्रभुपाद चतुरता से उसे ट्रिक कर रहे थे। किसमें? वो कृष्ण का नाम बार बार उच्चारण कर रहा था, यहां कृष्ण, वहां कृष्ण, यहां इधर उधर, सब जगह पे कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, उसके मुंह से केवल कृष्ण ही का ही नाम निकल रहा था। तो उसके जाने के बाद फिर प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आपने कुछ प्रतिरोध क्यों नहीं किया, आप केवल मुझे कहते मैं कर देता कुछ। अक्सर जब इस प्रकार के लोग आते तो ब्रह्मानंद प्रभु, यदि आपने देखा है ब्रह्मानंद प्रभु को, बहुत विशाल काया वाले, तो वो अक्सर प्रभुपाद केवल, कई बार जब प्रभुपाद को लगता है कि दूसरी भाषा सुनानी चाहिए इसे, तो केवल ब्रह्मानंद प्रभु की तरफ देखते, फिर ब्रह्मानंद प्रभु उसके पास जाकर खड़े होते और उसे केवल दिखाते, दरवाजा वहां है, खुद जाओगे या ले चलूं। तो अब यदि हम देखें, कितने सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में भी कि ऐसी चतुरता लगाकर बद्ध जीवों को भगवान की भक्ति में लगाया गया। एक हमारे इस्कॉन के ही सन्यासी हुए, वो रथ यात्रा का परमिशन लेने जब अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाते, जो वहां का म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, तो अब उनको, वो लोग कभी भी कुछ प्रसाद नहीं लेते, उनको किसी ने बोल दिया था कि ये जो हरे कृष्णा का कुछ खाना मत, कुछ तो मिलाकर खिलाते हैं ये लोग। तो ये जब परमिशन के लिए जाते रथ यात्रा की, तो ये केक लेकर जाते, बड़ा केक बनाकर ले जाते, और तुरंत देखते आ गया इनका, इनका ये मिला के लेकर आए ये लोग कुछ तो सभी कुछ भी, कोई खाना मत अभी, पूरे वो डिपार्टमेंट वाले। अब ये सन्यासी देखिए, उनको प्रसाद खिलाने के लिए कहते कि ये प्रसाद वसाद कुछ नहीं है, मेरी पत्नी का बर्थडे है आज, अब उन्हें तो पता नहीं कि सन्यासी की पत्नी भी हो सकती है क्या, क्योंकि वो पैंट शर्ट में जाते परमिशन लेने के लिए, तो कहते कि आज अरे पत्नी की बर्थडे है, क्योंकि हर साल वो उसी समय जाते तो साल में एक ही बार बर्थडे होगी ना। तो जब ये सुनते अच्छा अच्छा बर्थडे का केक है, फिर तो खाना ही चाहिए। जैसे देवामृत स्वामी वो बता रहे थे कि वो जब भक्ति में आए, येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट देवामृत स्वामी अमेरिका के, तो उनके माता पिता ये क्या हो गया, हमारा इतना सुशील बालक पढ़ा लिखा ये क्या पागलों जैसे हरे कृष्णा में चला गया। तो उनकी जो माता जी वो नाखुश थी, परंतु पूछती रहती बेटा कहां पर क्या खाता है तू, क्या करता क्या है। तो वो अपनी माता जी को बताते कि यहां पे तो कृष्ण कृष्ण सब कृष्णमयी हैं, हम कृष्ण का जप करते हैं, कृष्ण की अर्चना करते हैं, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं। तो अब वो क्रिश्चियन तो कभी कृष्ण का नाम सुना नहीं, तो एक बार वो कुछ पैसा भेजना चाहती थी अपने पुत्र के लिए देवामृत स्वामी के लिए, तो उन्होंने पैसा भेजा और फोन पे कहा कि बेटा ये पैसा मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूं, वो कृष्ण को मत देना। तो तभी मैं पैसा भेजूंगी, और काफी रकम थी। तो इन्होंने सोचा कि कैसे मेरी माताजी को सेवा में लगाऊं मैं, कि भगवान श्री कृष्ण के लिए डोनेशन वो दे रही, परंतु बोल ये रही कि कृष्ण को मत देना। तो फिर उन्होंने बोला कि हां जरूर जरूर बिल्कुल नहीं दूंगा, तो पैसे भेजे फिर माता ने। फिर बाद में फोन करके पूछा कृष्ण को तो नहीं दिया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 गौरांग को दिया। तो माता जी हाँ ठीक है जो भी है वो कृष्ण को मत देना, बाकी किसी को दे दो जो भी गौरांग वारांग जो। तो इसमें झूठ भी नहीं कहा और सच भी बोला। तो हम कई बार देखते हैं कि ये जो इसे ट्रांसेंडेंटल ट्रिकरी प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हाल ही में ये हमारा जो मिड डे मील प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है इस्कॉन का, जहां पर स्कूलों में जाकर ये खिचड़ी और प्रसाद बांटा जाता है, लाखों की संख्या में ये सब कुछ हो रहा है पूरे भारत में। तो कई ये जो मदरसा जो जहां पर मुसलमान के बच्चे जाते हैं, तो वहां पर भी प्रसाद शुरू किया, तो तुरंत उन्हें समझ गया कि ये हरे कृष्णा से आ रहा, ये सरकार से नहीं आ रहा, और वो तो बहुत ही विरुद्ध हैं अर्च विग्रह के मूर्ति पूजा के। तो प्रसाद वो जान गए कि ये जो प्रसाद है ये वो मूर्तियों को पहले ऑफर करते हैं और फिर हमें खिला रहे हैं, तो उन्होंने रूल निकाला कि कोई इसे खाएगा नहीं। तो जो भक्त इंचार्ज वो कहे कि किसने कहा कि हम अर्च विग्रह को खिलाते हैं, बोला और क्या आपका प्रसाद होता है आप ऑफर वगैरह करते हैं आप लोग, नहीं नहीं हम तो खाली एक प्लेट बना के देते हैं उनको, बाकी सब आपका रहता है, आप आके देखो हमारे मंदिर में, उन्होंने टाइम दिया ये टाइम पे आके देखो, इतना छोटा सा एक प्लेट रहता है वो प्लेट उनको देते हैं बस, वो खा लेते हैं, वो खत्म कर देते हैं, बाकी का जो रहता है वो सब इतना थोड़ी वो उनके लिए बनाएंगे हम। तो वो आके देखे फिर ठीक है उनके लिए खाली एक प्लेट, हाँ बाकी हमारे लिए ना, हाँ बाकी आपके, वो प्रसाद उसाद नहीं। जैसे कि हमारे परमहंस प्रभु हमें बता रहे थे, जब वो आईआईटी में पढ़ाई किया करते थे, तो परमहंस प्रभु, गौरांग प्रभु और भी कई लोग जो अब 16 माला, 4 नियम और एकदम तीव्रता से वहां आईआईटी में हॉस्टल में उन्होंने भक्ति शुरू की। तो अब परमहंस प्रभु और उनके साथ और कोई, वो आईआईटी का जो हॉस्टल का मेस है उसके इंचार्ज बने। उन्होंने अपनी योजना से कहा कि क्योंकि इतनी पढ़ाई भी करनी पड़ती आईआईटी की और उसके साथ फिर प्रसाद कैसे बनाएं, तो फिर मेस के इंचार्ज बन जाओ। तो मेस के इंचार्ज बन गए और अब वो मेस के इंचार्ज हैं, तो फिर सब उनके हाथ में। तो अगले दिन से कोई कांदा लहसुन नहीं आएगा मेस में, तो जो भी पकता बिना कांदा लहसुन के। और क्योंकि खुद परमहंस प्रभु भी अच्छा कुकिंग करते, तो खुद भी अच्छे से अच्छा पकाते ताकि लोगों को पता ना लगे कि इसमें वो नहीं है। और फिर उसे सीक्रेटली ऑफर भी करते, तो पूरा जो भी मेस में वहां पे वो लोग खाने आते तो उनको क्या मिल रहा था, बिना कांदा लहसुन का भगवान को अर्पित महाप्रसाद। तो ये कई महीनों चला। अब जो वहां पे के कुक थे उनको तो पता कि हम तो दिन रात कांदा लहसुन बनाते थे, अब बंद हो गया ये कांदा लहसुन। और ये तो हुआ क्या कि जो कांदा लहसुन का सप्लायर था उसका धंधा बंद हो गया, और वो ये कुक को पैसे देने लगा कि तुम खराब बनाना शुरू कर दो, और तुम फिर जब विद्यार्थी आके पूछेंगे कि क्या इतना क्वालिटी डाउन हो गया, हम क्या करें, कांदा लहसुन नहीं मिलता हमको। तो देखिए इस प्रकार से ये लोग ने फिर वो सप्लायर ने पैसा सप्लाई किया, घुस दी, और यहां पे ये कुक ने फिर वो क्वालिटी डाउन किया। और फिर जब विद्यार्थियों ने पूछा तब उन्हें समझा ही कांदा लहसुन नहीं इसके अंदर, इतना बड़ा अपराध। अब देखिए तब तक किसी को कुछ समझता नहीं। जैसे बहुत बार जब नए नए लोग प्रसाद खाना शुरू करते हैं और उन्हें बताया जाता है इसमें बिल्कुल नहीं है कांदा लहसुन, जैसे कल की जो भजी बनाई थी, कल आप लोग प्रसाद ली, तो हमारे कई भक्त इतने एक्सपर्ट हैं कि वो एकदम कांदा भजी जैसे बनाते हैं, बिना कांदा की कांदा भजी। तो इस प्रकार से कई भक्त, जैसे जयानंद प्रभु, उनके विषय में बताया गया है कि जयानंद प्रभु वो किस प्रकार से लोगों के उद्धार के विषय में सोचते। जयानंद प्रभु देखते संकीर्तन जाते समय कि अमेरिका में ये जो फलों के वृक्ष, जैसे एप्पल ट्री बहुत वहां पे रहते हैं, और ऐसे इतने बड़े बड़े एप्पल वहां पे उगते हैं, तो वो पूरे वृक्ष को ऑफर कर देते भगवान को। वो गाड़ी से उतरते देखे एप्पल ट्री, बहुत एप्पल उसमें सेब उगे हुए हैं, तो वहां पर घंटी और फोटो लाकर पूरे वृक्ष को भगवान को अर्पित कर दिया। तो जब पूछा जाता आगे चलकर जो भी अब इसमें से सेब लेगा महाप्रसाद होगा। हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी हैं, कई बार यदि आप उनके साथ बैठोगे तो उनकी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं प्रचार की कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक बार मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, वो करते क्या कि जैसे ही दोपहर का सबका प्रसाद हुआ, तो जो भी सन्यासी मंदिर में आए हुए, राधा गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज और अन्य, तो ये ब्रह्मचारी जाकर उनके प्लेट से महाप्रसाद लेकर वो प्रसाद हॉल से बाहर भाग जाते। तो ज्यादातर हम महाप्रसाद लेकर कहां डालते हैं, अपने मुंह में डालते हैं ना तुरंत। तो मैं देखता ये महाप्रसाद इनकी प्लेट, सन्यासी की प्लेट से लेकर बाहर कहां भागते हैं। तो मैं एक बार पीछे पीछे देखने गया तो हमारे मंदिर का जो गार्डन है वो गार्डन में चींटियों को खिला रहे थे। तो मैंने पूछा, और एक बार तो जब मैं राधानाथ महाराज की सेवा में था तो एक बार वो राधानाथ महाराज के पास गए एक द्रोण में चीनी लेकर, और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज थोड़ा चीनी खाएंगे? तो पूछे, क्यों भाई चीनी क्यों? तो वो बोले कि आजकल इतनी भीड़ हो रही है, आपका महाप्रसाद मुझे नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आप इसमें से थोड़ा खाइए तो महाप्रसाद बन जाएगा। तो इतने मासूम तरीके से बोले तो महाराज ने भी थोड़ी सी चीनी खा ली। ठीक है, अब तुरंत वो चीनी लेकर फिर वो चींटियों को देने लगे। तो मैंने पूछा कि क्या भाई इसके पीछे क्या, कौन सा ये प्रीचिंग प्रोजेक्ट है आपका? तो उन्होंने बताया, फिर वो कहे कि देखो इस्कॉन में दो समस्याएं हमारे सामने हैं। एक है हमारे पास फंड्स ज्यादा नहीं है प्रीचिंग के लिए, फंड्स ज्यादा नहीं है, और दूसरा ब्रह्मचारी ज्यादा नहीं है। तो ये जो चींटियां हमारे शुद्ध भक्तों का महाप्रसाद खाएंगी तो मरने के बाद या तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो ये किसी पैसे वालों के घर में जन्म लेंगे तो फंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और या यदि ये उस प्रकार से गृहस्थ नहीं बने तो फिर ब्रह्मचारी बनेंगे। और कितनी चींटियां हैं उनकी गिनती देखो। मैं सोचा कहां दिमाग लगाए, बाप रे। तो इतने आगे की तो कभी मेरे ख्याल से पंचतत्व ने नहीं सोची होगा। अच्छा, एक और उनका प्लान था, और ये तो बहुत ही धासु प्लान था इनका। इसमें ये चाहते थे कि अपने जो एकदम अब शुद्ध भक्ति को पहुंच गए जो हमारे सन्यासी इस्कॉन के, तो वो मुझे बोलते कि ऐसा करो, राधानाथ महाराज जब आईआईटी प्रोग्राम के लिए आते हैं तो वहां जो आईआईटी पवई लेख जो है वहां उनके पैर धुलवा दो। मैंने कहा क्यों भाई, वहां क्यों धुलवाना है? क्योंकि वो जो पवई लेख है वहां से पूरे बंबई को पानी सप्लाई होता है। तो सभी चरणामृत पियेंगे। तो मैंने कहा बाप रे, तो हम फालतू में इतना यहां वहां घूम रहे हैं तो ये सबसे आसान तरीका है। मैंने कभी सोचा नहीं इतना। तो इस प्रकार से देखिए, भक्तों का विचार, जैसे चैतन्य महाप्रभु यहां विचार कर रहे हैं कि कैसे चतुरी अपार, वैसे भगवान के जो भक्त होते हैं इस प्रकार के अलग अलग चतुर योजना उनके अंदर होती है। आजकल लेटेस्ट उनका क्या है मैं पूछा नहीं, काफी समय से उनसे मिला नहीं, तो लेटेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे कलयुग के उद्धार के लिए? तो अब चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि ये जो मुझसे दूर भाग रहे हैं, जो इतने दक्ष महादक्ष मुझसे दूर भाग रहे हैं, कैसे इन्हें मैं पकड़ूं? तब चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन की तरफ निकले, परंतु वृंदावन की तरफ वो निकले वाराणसी से होते हुए, और वाराणसी उस समय मुख्यालय हेडक्वार्टर किसका? मायावादियों का। तो मायावादियों का मुख्यालय वाराणसी, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर वाराणसी से होते हुए वृंदावन गए। तो वाराणसी में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर अवस्था में नृत्य करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन कर रहे थे। तो जितने सारे मायावादी वहां पर वाराणसी में, वो सारे चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगे, ये सन्यासी है, ये क्या भावुक की तरह नाचता है गाता है, ये कोई सन्यासी के लक्षण है? सन्यासी को तो बैठकर वेदांत पढ़ना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। सोहम अहम ब्रह्मास्मि, बस केवल इतना ही उच्चारण होना चाहिए। ये क्या जोर जोर से कीर्तन और ढोल मृदंग करताल इनके साथ, ये कोई सन्यासी के लक्षण? तो निंदा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु उस समय तो निकल पड़े वृंदावन, और वापस फिर वो आए मथुरा से, वापस वाराणसी आए, और फिर वो अब उन्होंने ठान लिया कि वाराणसी के जितने सारे मायावादी हैं, कुछ ही दिन में ये सारे मायावादियों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में नाचना है, ये उन्होंने ठान लिया। और चैतन्य महाप्रभु फिर चंद्रशेखर, जो वाराणसी के कायस्थ, उनके घर पर रुके, जानबूझकर उनके घर पर रुके, इनको दिखाने के लिए कि देखो मैं हालांकि शंकर संप्रदाय में का एक सन्यासी, परंतु मैं एक शूद्र के घर में रुका हुआ हूं, तो और ये लोग सब निंदा करना शुरू किए, देखो अब क्या कर रहा है ये सन्यासी, अब एक कायस्थ के घर में रुका हुआ है। और तपन मिश्रा वो मिलने आते चैतन्य महाप्रभु से, तो अब ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को कहे कि हमसे सहन नहीं हो रहा कि ये लोग सब आपकी ऐसी निंदा कर रहे हैं, पूरा वाराणसी और विशेष रूप से ये जो मायावादी सन्यासी हैं जिनके सरदार हैं प्रकाशानंद सरस्वती, ये सैकड़ों की संख्या में सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य, ये सब आपकी ऐसी निंदा कर रहे हैं, हमें सहन नहीं होता, कुछ तो करना होगा। चैतन्य महाप्रभु केवल मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। उस समय एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहां पहुंचा, कहां से? महाराष्ट्र से, परंतु वहां पर रहता वाराणसी में, तो वो वहां पर पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु को एक न्योता दिया, इनविटेशन, कि मैं ये प्रकाशानंद सरस्वती और इनके जितने सारे मायावादी सन्यासी शिष्य हैं, इनको मैं अपने घर पर बुलाया हूं भोजन के लिए, और मैं आपको भी न्योता दे रहा हूं कि आप भी आइए इनके साथ भोजन लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जान गए कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा इनको प्रचार करने का। तो अब चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रस्तुत होते हैं, और ये सब अब जानते हैं कि ये सन्यासी जो केवल भावुक तरीके से नाचता गाता फिरता, ये भी आ रहा है भोजन लेने। तो सभी सतर्क थे कि अब आमने सामने वाद विवाद करेंगे और फिर सारा निकालेंगे ये भावुकता का भूत इस सन्यासी का। तो ये सब तैयार थे, प्रकाशानंद सरस्वती और सारे मायावादी सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही ये लोग सब बैठे हुए एकत्रित, चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया उस कक्ष में, और बगल में ही जहां पर पैर धोने का स्थान था, चैतन्य महाप्रभु वहां गए, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण धोए और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, पैर धोने के स्थान पर जहां पर ये सारे मायावादी सन्यासियों ने अपने अपने पैर धोए थे, और जो भी वहां पर अंदर आता प्रसादम हॉल जैसा अपना पहले पैर वहां पर धोता, तो वहां पर ये शंकर संप्रदाय के, इन्हीं की संप्रदाय के सन्यासी बैठ गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर बैठ गए तो वो साधारण अपनी छवि नहीं दिखा रहे थे अब इन्हें। वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय वपु कोटि सूर्य भाष। जब चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए तो बैठते ही ये लोग ने देखा चैतन्य महाप्रभु के अंदर कोटि कोटि सूर्य प्रकाश, कि मानो कोटि सूर्यों का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर हो, उस प्रकार से दिख रहा था, महातेजोमय। और चैतन्य महाप्रभु ने यह तेज क्यों दिखाया? क्योंकि ये जो मायावादी ये ब्रह्म ज्योति से बहुत आकर्षित रहते हैं, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है इसमें बहुत आकर्षित रहते हैं ये, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना ये विशेष तेज इन मायावादियों को दिखाया। तो यहां पर जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का वो तेज इन्होंने देखा और चैतन्य महाप्रभु को उस पैर धोने के स्थान पर बैठते हुए देखा, तो ये सारे सन्यासी स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए और वैष्णव सदाचार के अनुसार जब कोई बहुत विशेष व्यक्ति का आदर करना होता है तो सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु इन्हें चतुरता से ट्रिक कर रहे थे। अब देखिए, अपना तेज दिखाया और ऐसे स्थान पर बैठे तो आश्चर्यचकित होकर ये लोग चैतन्य महाप्रभु का आदर किए खड़े होकर। अब ये आदर नहीं करने वाले थे, अनादर करने वाले थे, परंतु तेज देखकर अब इनसे रहा नहीं गया तो खड़े हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें खुद को आदर करने में लगाया सबसे पहले। फिर प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी रमन, उठिल सन्यासी सब छाड़िय आसन। इस श्लोक में बताया गया अपना आसन छोड़कर ये खड़े हुए और तुरंत अब प्रकाशानंद सरस्वती की तरफ सन्यासियों ने देखा कि ये उधर बैठ गए, कुछ करो। तो प्रकाशानंद सरस्वती गए और वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि प्रभावे देखिया तुम साक्षात नारायण, हीन आचार कर के न इथे की कारण। कि ये तो पहले से ही आपस में एक दूसरे को नारायण नारायण बोलते, जो मायावादी होते हैं वो आपस में एक दूसरे को नारायण पुकारते हैं। जैसे हम गंगोत्री गए थे कुछ वर्ष पहले, तो वहां गोमुख चलना पड़ता है 18 किलोमीटर ऊपर, गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर है गोमुख, और गोमुख पहुंचने से 4 किलोमीटर पहले भोजवास करके एक आश्रम है, मायावादियों का है वो। तो और कुछ नहीं वहां पर, केवल हिमालय बर्फ और वो एक छोटा सा आश्रम। तो जो भी वहां से गोमुख पहुंचना चाहता उसे वहां पर ठहराव करना ही पड़ता है। तो वहां पर वो जो भी भोजन वगैरह देते हैं बिना प्याज लहसुन का देते हैं। तो हम लोग कुछ 20 भक्त थे, तो अब वहीं उसी आश्रम का जो भी प्रसाद कहो या जो भी कुछ कहो उसे, तो वो हमें लेना पड़ा क्योंकि इतना हम चल के आए, इतना थके हुए, भूख लगी हुई है और वहां पर कुछ नहीं और जीवित रहने के लिए। तो वो हम सबको बिठाए और जैसे हम लोग पंगत में बैठकर महाप्रसादे गोविंदे सब गाते हैं, तो हम सबको बिठाया और वो जो व्यक्ति वहां के मठाधीश जैसे, वो फिर बोले कि अपने सेवक को बोले, परंतु उसे सेवक नहीं बोलते थे, उसे बोल रहे थे नारायण, परोसो परोसो। तो हमें लगा उसका नाम होगा शायद नारायण, परंतु वो सभी को नारायण बुला रहे थे। तो मुझे उसने पूछा नारायण आप लेंगे? वो, वो कुछ सलाद था, तो बोला नारायण आप सलाद लेंगे? तो मैं यहां वहां देखा कि ये किसको पुकार रहा है नारायण। तो मैंने कहा नहीं नहीं लूंगा। तो फिर सबको परोसने के पश्चात नारायण ने नारायण को परोस दिया। क्या परोसा? नारायण परोसा। नारायण ने नारायण को नारायण परोसा। और फिर ये जो मठाधीश जैसा वो खड़ा था, उसने कहा अब सभी नारायण भोग लगाइए। तो हम एक दूसरे को देखने लगे, अब कहां जाके भोग लगाना है? तो उसे कहने का अर्थ था कि अब आप भगवान जो हैं, आप लोग सब लीजिए, भोग लीजिए। तो ये इस प्रकार से अब प्रकाशन सरस्वती भी, हालांकि वो सही कह रहे हैं यही है नारायण, कौन? श्रीमान गौरांग महाप्रभु। तो अब असलियत में साक्षात परम सत्य निकल रहा है इनके मुख से, प्रकाशन सरस्वती की, कि हे आप साक्षात नारायण, और आपके अंदर से जो तेज निकल रहा है साक्षात नारायण का जो तेज है उस प्रकार का है, आप ये इस प्रकार का हीन आचार कैसे कर रहे हो, यहां क्यों बैठ गए? और फिर प्रकाशन सरस्वती उन्होंने तुरंत स्वाभाविक रूप से अपना हाथ दिया चैतन्य महाप्रभु को खड़े होने के लिए। अपने प्रकाशानंद हाते त धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। इस प्रकार से हाथ आगे किया चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने हेतु। तो जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से ऐसे स्थान पर बैठे अपना तेज दिखाया। तो यहां पर देखिए तीन चीजें हुई। अज्ञात सुकृति जिसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि इनका उद्धार करने के लिए इनके अंदर कुछ अज्ञात सुकृति पहले डालनी होगी, तब तो जाके, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है वो किसी को नौकरी पे रखने चाहता है तो पहले कहता है भाई तुम पहले कुछ पढ़ लिख लो, तब तो जाके मैं तुम्हें मेरे कंपनी में रख पाऊंगा। तो कई बार वो जो मालिक होता है वही उसे पढ़ाता लिखाता है कि ठीक है मैं तुम्हें डिग्री देता हूं और फिर मैं ही तुम्हें भर्ती करता हूं। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि मैं ही इनकी अज्ञात सुकृति पैदा करूंगा और फिर मैं ही इनका उद्धार करूंगा। इनके अंदर तो कुछ अज्ञात सुकृति नहीं, उल्टा अज्ञात नहीं ज्ञात दुष्कृति है कि जानते बूझते ये तिरस्कार मेरा कर रहे थे अब तक। तो तीन अज्ञात सुकृति, सबसे पहले ये खड़े हुए आदर किए चैतन्य महाप्रभु का, ये सबसे पहली अज्ञात सुकृति हो गई। और फिर इन्होंने आपस में चैतन्य महाप्रभु के तेज को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता का गुणगान किया, इतने सुंदर सन्यासी कभी देखे नहीं हमने, हमारे भी ऐसे नहीं है। तो अपनी वाणी से गुणगान किया। और तीसरा अज्ञात सुकृति, इनके जो प्रमुख सरदार प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु को वहां से उठने के लिए सहारा दिया, तब चैतन्य महाप्रभु जान गए कि बस इतना सफिशियंट है अब इनके उद्धार के लिए। जैसे पूतना का उद्धार, उसने जो थोड़ा बहुत दूध पिलाया भगवान श्री कृष्ण जान गए बस इतना काफी है पूतना के उद्धार के लिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने बिठाया, और बिठाने के पश्चात अब प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं आप हमारे ही संप्रदाय के सन्यासी हो, आप ये क्यों ऐसा भावुकता का व्यवहार करते हो? शंकर संप्रदाय के जो सन्यासी होते हैं वो बहुत ग्रेव होते हैं, गंभीर होते हैं, ऐसी भावुकता में नहीं लगते हो, क्यों ऐसी भावुकता में लगे हो? तब वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे जो गुरु हुए कौन? ईश्वरपुरी। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, श्रीपाद कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे सर्टिफिकेट दिया साइन कर कि तुम मूर्ख हो और तुमसे ये वेदांत अध्ययन नहीं होने वाला, तुम केवल ये हरिनाम इसे जपो। मूर्ख तुमी तो मारना ही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा एई मंत्र सार। तो मेरे गुरु महाराज ने देखा कि मैं मूर्ख हूं, उनके सारे शिष्यों में से मैं सबसे ज्यादा मूर्ख, तो कहा कि वेदांत पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का ही तुम जप करने के लायक हो। अर्थात उनके गुरु महाराज जो उनको बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु अपने बारे में कह रहे थे, परंतु यह सत्य बात कि जो केवल वेदांत 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 में ही रचा पचा रहता है वो मूर्ख है, क्योंकि वो सारे वेदांत का सार क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, कृष्ण एव वेद्य। तो सारे वेद का सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रमुख है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप, तो यदि जो सभी वेदों का सार है वो छोड़कर केवल वेदों में ही घुसा पड़ा है ढूंढते हुए कि क्या करूं क्या करूं, तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वो कह रहे थे कि आप लोग सब जो लगे पड़े हैं वेदांत अध्ययन में, आपसे बड़े मूर्ख और कोई नहीं। अब यहां पर देखिए, चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्रता से सबसे पहले अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं, हालांकि आपके शंकर संप्रदाय में मैंने संन्यास लिया, परंतु मैं उस संप्रदाय में केवल जो भारतीय जो स्तर है उस स्तर में मैंने संन्यास लिया है उस संप्रदाय में, और आप तो सरस्वती उस संप्रदाय के हैं, तो आप तो बहुत बड़े विद्वान और बहुत उच्च कोटि के हैं, तो मैं आपके सामने क्या हूं, इसलिए मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता वेदांत ये सब कुछ, इसलिए मैं केवल मुझे मूर्ख कहा और मुझे जप करने के लिए कहा तो वही मैं करता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पाबे कृष्णेर चरण। क्योंकि ये लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, इसलिए अब रूप को ला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि ये कृष्ण मंत्र जप करने से श्री कृष्ण के चरण का दर्शन होता है जो आप लोग नहीं मानते। तो चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे इनको प्रचार करना भी शुरू कर रहे हैं और कहे, नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सर्व नाम ए शास्त्र मर्म। कि तुम जो इतना वेदांत अध्ययन कर रहे हो सारे वेदांतों का निचोड़ है ये नाम जप ये मंत्र। तो अब प्रकाशानंद सरस्वती और कई श्लोक बताए गए हैं जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञान वेदांत इन सब के बारे में बोलते हुए उन सब का सार केवल मंत्र जप और विशेष रूप से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब ये समझाने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जब मैंने ये जप करना शुरू किया तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन होना शुरू हुआ ये मेरे बस में नहीं था। आप लोग ये पूछ रहे हो कि मैं क्यों ऐसी भाव विभोर पागल अवस्था में नृत्य करता हूं जप करते हुए, तो ये मेरे अंदर कोई बस नहीं है अपने आप में, इसलिए जब मुझे मेरे गोसाई ईश्वरपुरी ने ये मंत्र मुझे दिया तो मैं पागल की तरह नृत्य करने लगा इस मंत्र को जप करते हुए। मैं गया अपने गुरु महाराज के पास और मैं कहा कीबा मंत्र दिल गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। मैं गया, आप लोग को कंप्लेंट है, शिकायत है कि मैं क्यों पागलपन की तरह करता हूं, पागल की तरह मैं नृत्य करता हूं, तो मैं खुद ये कंप्लेंट लेके गया था मेरे गुरु महाराज के पास। ये क्या जप दिया है आपने मंत्र कि जपीते जपीते होई ल पागल, पागल हो रहा हूं मैं ये जप करते करते। कई बार हम भी अनुभव करते हैं जब कोई नया व्यक्ति जप करना शुरू करता है तो प्रभु जी कुछ हो रहा है आजकल। एक व्यक्ति आए प्रभुपाद के पास, स्वामी जी मैं जब ये हरे कृष्णा जप करता हूं, ये जो आप लोग करते हैं मैं भी शुरू किया हूं, तो मेरे सामने ऐसा बहुत बड़ी व्हाइट रोशनी लाइट आती है, आई सी अ व्हाइट लाइट, व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए। प्रभुपाद कहे जप करते रहो वो चली जाएगी। तो इसे लगा कि प्रभुपाद फिर उसे कहीं पे नोट करवाएंगे कि यही नोट करो, देखो क्या क्या हो रहा है इसे। प्रभुपाद क्या जब करते रहो वो सब निकल जाएगा बाहर। तो कई बार लोगों के अंदर ये अनुभव होता है, एक व्यक्ति बोले मुझे आजकल नींद बहुत अच्छी आती है जब करने के बाद, ऐसी सुख की नींद आती है, जैसे ही वो जो मैं चार माला करता हूं उसके बाद ऐसी ऐसी थकान होती है, आध्यात्मिक दिव्य थकान होती है मुझे, और उसके बाद ऐसी नींद आती है। कोई एक मुझे हाल ही में कह रहा था कि प्रभु जी किसी में मन नहीं लगता आजकल, न कॉलेज में मन लगता है, न घर में मन लगता है, कहीं पर भी जाऊं केवल ये हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल यही गूंजता रहता है कानों। और कई बार हम देखे हैं कि जब हम हरिनाम संकीर्तन भी निकालते हैं नगर संकीर्तन, तो कई एकदम दिखने में सूट टाई में सुशिक्षित व्यक्ति जब वो देखते हैं हरिनाम संकीर्तन तो पागलों की तरह नाचते हैं। छोटे बच्चे उनको भी कई बार देखा गया है, सब छोड़ छाड़ कर पागलों की तरह, फिर उनके माता पिता भी आकर पागलों की तरह नाचते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहे कि मेरी भी शिकायत यही थी, मैं गुरु महाराज के पास गया क्या मंत्र दिया आपने, तो उन्होंने क्या कहा मुझसे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ईश्वरपुरी कहे कि यही तो निष्कर्ष है हरिनाम करने का कि व्यक्ति पागल हो जाए हरि नाम करते हुए। कृष्ण नाम महामंत्रेर एई त स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजये भाव। अरे बहुत कम लोगों को इस प्रकार का भाव उपज होता है जो हुआ है तुम्हें, ईश्वरपुरी कहे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अब बहुत से श्लोक उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरिनाम की महिमा बताई, और वो भी शास्त्रों पर आधारित। फिर ये सब इतने प्रभावित हुए क्योंकि अब तक केवल उनका प्रभाव महातेज देखा था, अब उनकी वाणी सुनी तो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए ये सारे मायावादी सन्यासी और प्रकाशानंद सरस्वती। तो फिर पूछा कि वेदांत सूत्र के बारे में आप कुछ कहिए, तब फिर चैतन्य महाप्रभु शुरू किए फिलॉसफी सुनाना, और ऐसी फिलॉसफी सुनाई कि ये सारे मायावादी जो ब्रह्म ज्योति में भी हिल नहीं पाते थे वो सारे अब हिलने लगे, ऐसी फिलॉसफी सुनी। और फिर चैतन्य महाप्रभु अंत में प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं, नहीं कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, काशीते नहीं कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खाटो द कसम। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का श्लोक वो बोले कि ये जो तुम ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद के पीछे भाग रहे हो, ये कृष्ण प्रेम जो कीर्तन का आनंद है, कीर्तनानंद दो है, एक है ब्रह्मानंद एक है कीर्तनानंद। तो ये जो कीर्तन का आनंद है इसके सामने ये जो तुम्हारा ब्रह्मानंद है खाटो द कसम। तो ये तुलना क्या की है कि कृष्ण नाम का जो आनंद है एक सिंधु के समान है, एक समुद्र के समान है, और ये जो तुम ब्रह्मानंद, तुम सारे जो मायावादी ब्रह्मानंद के पीछे भाग रहे हो, ये नाले का जो पानी होता है खाटोदक उसके समान। सोचिए देखिए, ये इतने सारे मायावादी सन्यासियों को उनके मुंह पे बोलना है कि तुम्हारा जो ब्रह्मानंद है वो नाले के पानी के समान है, खाटोदक सम। श्रील प्रभुपाद मायापुर में वो एक मॉर्निंग वॉक पर थे तो प्रभुपाद सुना रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु वो झारखंड से निकले तो उन्होंने जानवरों को हरिनाम में लगा दिया, जब वो बनारस गए तो मायावादियों को हरिनाम में लगा दिया। उस समय मायापुर का मंदिर बन रहा था तो श्रील प्रभुपाद कहे क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की शक्ति उस प्रकार से नहीं हमारे अंदर है, इसलिए हमें इतना बड़ा मंदिर बनाना पड़ता है ताकि लोग यहां पर आके कीर्तन करें। हम एक जगह पर बैठकर कीर्तन करें तो कोई आएगा नहीं, प्रभुपाद कह रहे थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी थे उस समय उस मॉर्निंग वॉक में, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, आपने भी तो वही किया जो चैतन्य महाप्रभु किए, टॉमकिन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में आप भी चैतन्य महाप्रभु की तरह पेड़ के नीचे बैठ के आपने कीर्तन किया और हम लोग सब, क्योंकि ब्रह्मानंद प्रभु वो भी उस समय आए थे वहां पे, वो भी नाचने लगे थे। तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद ये ब्रह्मानंद सबसे पहले आया था नृत्य करते हुए। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु बोले नहीं प्रभुपाद, मुझसे पहले कीर्तनानंद स्वामी वो सबसे पहले नृत्य करना शुरू किए थे। तो प्रभुपाद बोले हाँ वो तो हो गई, द आनंद ऑफ कीर्तन इज ग्रेटर देन ब्रह्मानंद। तो वैसे ही यहां चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये कृष्ण नाम आनंद सिंधु के समान है, और क्या ये तुम्हारा ब्रह्मानंद खाटो द कसम, इसके पीछे नाले में फंसे हो तुम लोग, निकलो बाहर और समुद्र में आओ हरि नाम के। तो अब इन सब का हृदय परिवर्तित तो हो चुका था, हरि नाम सुनकर, लेक्चर सुनकर, उनका दर्शन लेकर, और इसके बाद फिर भोजन प्रसाद जो उस समय से चला आ रहा है प्रोग्राम। तो ये सब कुछ हुआ और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से चंद्रशेखर इनके निवास स्थान पर पहुंचे तो ये महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण भागते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास आता है और कहता है कि महाप्रभु आपने जो किया है पूरे वाराणसी में इसकी चर्चा हो रही है, और आप वहां से निकले उसके पश्चात जो सबसे विद्वान सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य वो खड़ा हुआ, चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलने के बाद वो खड़े होके उसने सभी सन्यासियों को कहा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है मैं देख लिया हूं, और आप लोग सब देखे कि नहीं? सभी ने कहा हाँ, यही साक्षात नारायण है, और इनके मुख से जो वेदांत की वाणी निकली है वो साक्षात वेद वाक्य है, इनकी तरह कोई प्रवचन नहीं दे पा था हमारे अंदर। इस प्रकार से उनका गुणगान करने लगे, और फिर प्रकाशानंद सरस्वती वो खड़े हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया कि हम सब केवल शुष्क ज्ञानी थे अब तक। एक उदाहरण दिया गया है कि ड्राई ऑयल केक, कि कोई मिठाई बनाए, एक तो तेल में और वो भी सूखा हुआ, कुछ सुखड़ी जैसा नाम भी हुई। तो हम सब वो सूखे हुई सुखड़ी के समान, सुखड़ी भी यदि भगवान को भोग चढ़ाए तो उसका भी स्वाद अच्छा रहता है ना। लेकिन यहां प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि हम सब शुष्क ज्ञानी, और ये चैतन्य महाप्रभु अमृत के समान इनकी वाणी हमारे ऊपर जैसे रबड़ी उस शुकड़ी के ऊपर गिरे, वैसी इनकी वाणी। तो ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं कि इस प्रकार का प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु कुछ ज्यादा वो चलते गए, ऐसा नहीं कि वो रुक के बताओ और क्या बोला बताओ, हो गया। चैतन्य महाप्रभु जान गए कि डोज मिल गया है, वो तो होना ही है सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु आगे चलते रहे, और वाराणसी में बिंदु माधव मंदिर है, तो बिंदु माधव के दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु गए। और चैतन्य महाप्रभु फिर वहां पर दर्शन करते ही हरिनाम शुरू किया, नृत्य शुरू किया, भाव विभोर अवस्था में पूरा वाराणसी शहर वहां पर पहुंचा और सभी हरिनाम संकीर्तन में, पूरे वाराणसी शहर में कोई हरिनाम नहीं लिया करता था, अब सभी हरिनाम लेने लगे। और प्रकाशानंद सरस्वती को पता लगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में हरिनाम कर रहे हैं, तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने सारे शिष्यों को लेकर चलो सब, और सभी बिंदु माधव मंदिर पहुंचे। और प्रकाशानंद सरस्वती ने फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ा, और श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित होकर ये क्या कर रहे हैं आप, सरस्वती संप्रदाय के इतने बड़े सन्यासी और मुझ जैसे अधम व्यक्ति के आप चरण पकड़ रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अब श्रीमद् भागवत से प्रकाशानंद सरस्वती कहे कि वो जो सर्प था, जो विद्याधर जो सर्प के रूप में जिसे श्राप मिला था, सर्प के रूप में जो वो शापित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उसका उद्धार किया, तो मैं भी अब तक उस सर्प के समान आपकी निंदा किया करता ऐसा विष फेंक रहा था, तो ये आपके चरण ही मुझे शुद्ध करेंगे। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श किया, तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने सारे सन्यासी, सैकड़ों सैकड़ों सन्यासी शिष्य भाव विभोर अवस्था में हाथ ऊपर करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वाराणसी को 5 दिन में हरिनाम की बाढ़ में डुबो दिया। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर और तपन मिश्रा से मिलते हुए कहे, कैसा लगा, मतलब ऐसा तो नहीं उन्होंने पूछा, परंतु वो कहे, बहुत सुंदर श्लोक है, काशी ते ग्राहक नाही वस्तु न विकाय, पुनरपि देशे वही लायो नहीं आय। वो कहे कि मैं काशी में आया था कुछ बेचने के लिए, परंतु मैंने देखा और आप लोग कहे कि यहां पर कोई ग्राहक नहीं खरीदने के लिए जो आप बेचने आए हो, क्या हरिनाम को जो आप यहां पर बेचने आए हो कोई ग्राहक नहीं है इस वाराणसी में। परंतु चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि कैसी थी, सबसे ज्यादा ग्राहक तो यहीं बैठे हैं। जैसे हम ये छोटी सी घटना बताते हैं कि एक जूता कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को भेजा अफ्रीका के एक प्रांत में, तो ये सेल्समैन ने अपने कंपनी के मालिक को फोन करके बोला कि कोई यहां पर जूता पहनता ही नहीं, क्या फायदा यहां पर मार्केट खोलकर, कोई जूता नहीं पहनता, ये सब जंगली लोग ऐसे ही घूमते हैं नंगे पैर, तो सब वापस ले लो सामान यहां से। तो फिर उसने दूसरे अपने एक सेल्समैन को भेजा और उसने फोन किया कि जितना माल है सब यहां भेजो, क्योंकि यहां पर कोई जूता नहीं पहनता तो सबसे ज्यादा मार्केट यहां पर है जूते का। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु कहे कि यहां पर कोई हरिनाम नहीं ले रहा तो सबसे ज्यादा मार्केट वाराणसी में है हरिनाम बेचने का। तो फिर चैतन्य महाप्रभु मानो इनको पूछे कि जरा काउंटिंग करो कितने ग्राहकों ने माल खरीदा हमारा। तो पूरे वाराणसी ने चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम का माल लेकर आए वो पूरे वाराणसी ने क्या किया, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शट गुण बाढ़े। कि इस प्रकार से जो पंच तत्व लुटिया और खाइया करते हुए वो इस कृष्ण प्रेम के भंडार को उजाड़ उजाड़ के बांट रहे थे, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की केवल एक लीला का वर्णन है जब उन्होंने पूरे वाराणसी के मायावादियों का उद्धार किया। और तब कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित नहीं रहा, केवल ये दूर भाग रहे थे परंतु इनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने लपेट में लेकर और इन्हें हरि नाम में लगा दिया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो कल इन्हीं श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो हमें तैयारी अपने मन की करके रखनी है कि जैसे कि ये मायावादी कुतर्की निंदक पाषंडी ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतने दूर भागते, हम भी कितने जन्मों से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दूर भाग रहे थे और भाग रहे भी अभी भी भाग रहे होंगे। तो हमें ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु से करनी है कि मैं उस प्रकार का हूं मायावादी जो आपसे दूर भागता है, परंतु आप जैसे प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किए वैसे पकड़कर मेरा भी उद्धार आप उसी प्रकार से कीजिए, वही एकमात्र आशा है हम सबकी। तो इसलिए कल सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ होगा मंगल आरती से 5 बजे, आप लोग सब आमंत्रित हैं और भी आपके परिवार वालों को और रिश्तेदारों को मित्रों को आप बुला सकते हैं। और जैसे हमने अनाउंस किया था कि कल का भागवत पाठ हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज द्वारा दिया जाएगा, वो कल सुबह आएंगे दर्शनार्थी के समय, उसके पश्चात फिर वो सुबह का क्लास देंगे और फिर शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा सचिन प्रभु बताएंगे। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।